ज्ञानशलाकेह चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमो। महावदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्यनम् गौरदिशे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वांशुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। हा देवी काकू भरत जगदयात्यवाच जाचे निपत्त भोगि तन्वतो दुःखटायते अस्य प्रसाद बुधस्य जनस्य कृत्वा गंधर्विके निजगणे गणनां विधे। अंगश्यामलिं छटाभिरभितो मन्दे कृतेन्देवरं जातं जातुजरोचितं कृतदतं पट्टं अरण्यनिवासिनं हृदिदशद्धामाभिरामोदर राधास्कन्दनिवेशितोज्ज्वलभुजं ध्यायेन् धाम। भक्त्या विहीनापराधलक्ष्यै चेत्त्वाश्च कामादितरङ्गमध्ये कृपामयीं त्वां शरणं प्रपन्न वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दे। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय तवैवास्मि तवैवास्मि न जीवामि तया विना इति विज्ञाय राधे तं नयामि शरणान्तिके। श्री श्री राधारमण जी के चरणों में अपनी कोटि कोटि हार्दिक पुष्पांजलि अर्पित करता हूं। गुरु वैष्णव लोग मुझ पर प्रसन्न हो, उनकी कृपा वर्षित हो। मैं कल चैतन्य महाप्रभु जी की करुणा के ऊपर में कुछ कह रहा था। न पिति चरण चिरात करुण्यावतर न करो समर्पित भक्ति। हरि अपूर्व सुंदर द्योति कदम्ब संदीपित सदा हृदय कंदरे स्फुरत मेघ स्फुरत वर्ष चिन्ह। इस श्लोक की व्याख्या करते हुए जैसे कि हमारे परम पूज्यपाद टीकाकारों ने किया है, विशेष करके विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी चैतन्य चरितामृत बंगला ग्रंथ होने पर भी मैं समझता हूं कि क्लिष्ट से क्लिष्ट जो सत्संदर्भ हैं उनसे कम नहीं। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी ने इसकी संस्कृत में टीका की, इसी से समझिए। तो मैं कल बतला रहा था जो चैतन्य महाप्रभु जी के अवदान का वैशिष्ट मैं कह रहा था। जितने भी अवतार आए हैं, जितने भी आचार्य लोग आए हैं, सबकी कृपा को क्रोड़ीभूत कर और अपना अधिकतर वैशिष्ट रखते हुए जगत को वो चीज दिया जो पहले एक कल्प पहले जो उन्होंने दिया था इसके बीच में नहीं दिया था। इसलिए चरम चिराग चिरात्मा ने कभी नहीं दिया ऐसा नहीं दिया था। बहुत काल नष्ट काल में वो नष्ट हो गया था। साधु भट्टाचार्य जी महाप्रभु की वंदना करते हुए कल उनके संबंध में कृपा के संबंध में मैंने कुछ बतलाया। भक्त स्वभक्ति स्वयं स्वभक्ति स्वयं मैंने अपनी भक्ति की संपत्ति जिसके द्वारा ब्रज प्रेम को अपने हृदय में लाया जा सकता है खरीदा जा सकता है। और स्वभक्ति स्वयं का यह भी बतलाया जो राधा जी की जो स्वयं अपनी भावनाएं हैं भाव है उसकी शोभा के रूप में ये उसी की विश्व विश्वनाथ चक्रवर्ती जी ठाकुर जी जिस रूप में बतला रहा है श्रीमद् भागवत के दशम स्कंद के एक श्लोक में भी उन्होंने कुछ कुछ इसका परिचय दिया। इसके पहले महाप्रभु जी की करुणा के संबंध में श्री नरोत्तम ठाकुर जी अपने हृदय की अभिव्यक्ति कर रहे हैं। गौर ब्रज जन में भेद नहीं भरज वासी धान स्वरूप स्फुरी देने हई बराधा उदास करें गौर ब्रज जन भेद नहीं। जो लोग गौर और ब्रज को एक समझते हैं अभिन्न गौर को प्रच्छन्न वृंदावन बतलाएंगे अभिन्न वृंदावन है तो गौर के जो भक्त हैं परिकर हैं महाप्रभु जी के और कृष्ण के जो परिकर हैं इनको अभिन्न समझो अलग अलग मत समझो। ये पुरुष रूप में है ललिता विशाखा इत्यादि सर्वदामोदर रामानंद प्रभु के रूप में जो आए हैं उनको एक देखो इस चीज को समझो उपलब्धि करो। हमारे उद्वाचार्यों ने गौ गणोपदेश दीपिका इत्यादि में और भी विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी ने अपने अपने ग्रंथों में यह वर्णन किया है। तो कहते हैं कि गौर ब्रज जन भेद न हरिवे भेद मत देखना अभिन्न देखना हरि वे ब्रज वासी तुम गौर में है तुम ब्रज के परिकर हो जाओगे हरि वे ब्रज वासी धान स्वरूप स्फुरी में नहीं है। भक्ति विनोद ठाकुर जी कहते हैं अपने नवदीप धाम परिक्रमा की एक महत्व छोटी सी पुस्तक है उसमें लिखते हैं महाप्रभु जी को दास रस में सेवा करो उनको कृष्ण जैसे रासलीला इत्यादि के माध्यम से उनकी सेवा मत करने जाओ इनको दास रस से सेवा करो। जब दशरस की पुष्टि होगी इसमें सिद्धि होगी तो ये राधा कृष्ण दोनों महाप्रभु जी राधा और कृष्ण दोनों के रूप में ही प्रतिबिंबित होने लग जाएंगे। रामानंद ने उनको पहले गौ रूप में देखा सन्यासी रूप में और पीछे जब उनकी किताब प्रसिद्ध हुई पहले ये तो राधा कृष्ण दोनों ही हैं बल्कि इसे और कुछ देखा रसराज महाभाव के रूप में उनको देखा यही उनका वैशिष्ट है। महाप्रभु महाप्रभु जी को जैसे कृष्ण की आराधना करते हैं उसमें मत करते जाओ महाप्रभु जी का आदेश पालन करो नहीं तो गौर नागरी बात का दोष आ जाएगा। हमारे गोस्वामी ने गौर नागरी बात का विरोध किया है गौर को ही नागर सजा कर स्वयं नागरी बनना ये गौर भक्ति के प्रतिकूल है इसलिए उन्होंने जैसा आदेश दिया वैसा करेंगे। जब भक्ति परिपक्व हो जाएगी अपने आप यह धाम ब्रज के रूप में उदित होगा, राधा कुंड श्याम कुंड इत्यादि के रूप में ब्रज के रूप में उदित होगा और महाप्रभु राधा कृष्ण के रूप में ही होंगे। तो क्या होगा, धन स्वरूप स्फुरी में नहीं हई ब्रजवासी, अब यथार्थ में ब्रजवासी धाम कृष्ण धाम कृष्ण नाम। ये कुछ अपराध का विचार करते हैं, अपराधियों के हृदय में यदि अंकुरित नहीं होते कृष्ण नाम या कृष्ण धाम स्फुरित नहीं होते, कृष्ण नाम करे अपराधी का विचार, नाम ले ले, नाम लेने से भी उसका भाव है अंकुरित नहीं होता। इसलिए बहुत से हमारे गोस्वामी लोग, बहुत से लोग हमारे कृष्ण के भजन करने वाले बहुत दिनों तक यहां रहते, अंक में रसलालसा आस्वादन करने के लिए वृंदावन नवदीप धाम में गए। जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज जी का आप लोगों ने सुना होगा, गौरकिशोर दास बाबा जी महाराज जी और हमारे सब पूर्वाचार्य लोग सब गए। महाप्रभु जी सब के पास, कल मैंने बतलाया अपना मरचंडा सबके ऊपर मोटी कृपा है, जो सामने आया उसी को प्रेम दिया, पात्र भी दिया प्रेम भी दिया। इसी को भी सुना चतुर्वर्ती ठाकुर जी माधुर्य जी का दम्बिनी में अपने लिख रहे हैं, महाप्रभु जी के कृपा को क्या बतलाया, प्रभु श्री चैतन्य कृपा निरंकुश महामाधुर्य का दम्बिनी। उनकी कृपा को निरंकुश माधुर्य का दम्बिनी बतलाया, जिसके उदय होने पर यदि महाप्रभु की कृपा हो नव भक्ति का संचार होता है। नव भक्ति माने नवीन नवीन जो ब्रज की भक्ति है वो, अथवा नवधा भक्ति, नव माने नौ, नवधा भक्ति हृदय में जीवों की स्फूर्ति होती है और उस कृपा के होने के पहले ही जैसे वर्षा होने के पहले सुशीतल हवा बहने लगती है, उस शीतल हवा से जैसे चारों तरफ में ताप दूर हो जाता है, ऐसे भक्तों के हृदय में जो ताप है काम क्रोध लोभ मद मोह मात्सर्य अपराध इत्यादि का, महाप्रभु की कृपा होने के पहले ही संचरित होने के पहले ही वो सब दूर हो जाती है। और जैसे बहुत दूर में मरुभूमि में एक पेड़ सूख रहा हो तो ये हवा जब भी संचरित होने को होती है तभी उस विश्वनाथ चतुर्वर्ती ठाकुर जी कह रहे हैं कि मैं उस मरुभूमि का एक पापक हूं, एक वृक्ष हूं जो सूख रहा हूं, गर्म से एकदम झुलस रहा हूं। वह महाप्रभु कृपा ऐसी जो दूर से संचरित होने पर दूर से ही उस सूखे हुए वृक्ष में भी सरसता ला देती है, मैं ऐसी महाप्रभु जी की अमृत बरसाने वाली, रस रूपी अमृत बरसाने वाली, मधुर रस को बरसाने वाली, सरसाने वाली, मैं उस निरंकुश कृपा को पुनः पुनः प्रणाम करता हूं। निरंकुश कृपा क्या है, कृष्ण ने एक शर्त लगाया, जे यथा माम प्रपद्यन्ते ताम अथवा भजन्ते, सब जगह कुछ न कुछ शर्त है किंतु महाप्रभु जी की निरंकुश कृपा में कोई भी शर्त नहीं, उनके सामने बस जा रहे हैं, ये निरंकुश कृपा के व्याख्या करते हुए बतला रहे हैं। एक श्लोक में श्रीमद भागवत में बतला रहे हैं, अखिलता में फल दम न परम विदाम सख्यु अनुदेश यतो वयस्य वक्त्रं ब्रजेश तो अनुदेव दुष्टम जैवानुपीतम अनुरोध कटाक्षम। बड़ी सुंदर व्याख्या व्याख्या करते हैं, महाप्रभु की कृपा यदि न रहे ऐसी सुंदर व्याख्या कभी किसी भी संप्रदाय के लोगों ने, हम समझते हैं कि हजारों लोगों ने टीकाएं और व्याख्याएं की हैं किंतु बिना महाप्रभु की कृपा की ऐसी सुंदर व्याख्याएं कभी स्फूर्ति नहीं हो सकती। तो इस महाप्रभु जी की कृपा से सनातन गोस्वामी ने वैष्णव तोष्णी जी गोस्वामी ने कोई संक्षिप्त वैष्णव तोष्णी और यह सबका प्रसाद ग्रहण करते हुए विश्वनाथ चतुर्वर्ती ठाकुर जी कहते हैं, मैं ही सब लोगों का प्रसाद ग्रहण कर रहा हूं, जूठा जो कुछ रह गया। वैष्णव में कितनी दीनता होती है, दिनता का निदर्शन देखिए हमारे श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी ने, कृष्ण कविराज गोस्वामी से हमारे उस समय के तदानंतन वैष्णवों ने, रसिक वैष्णवों ने उनसे प्रार्थना की, आप महाप्रभु जी की लीलाओं का सरस ग्रंथन किया कर, हम लोगों की इच्छा यह है, उसमें उनके भक्तों का भी चरित्र आ जाएगा, उनके परिक्रमों का भी आ जाएगा, इसलिए आप कृपा करके कर। तो आदेश लेने के लिए सब वैष्णवों के पास में गए जो उस समय उपस्थित थे, रूप सनातन जी तो उस समय नहीं थे और सब लोग नहीं थे, किंतु जो जो उपस्थित थे, रघुनाथ दास गोस्वामी जी, श्रील जी गोस्वामी का और वो भी सब उपस्थित थे, गोपाल भट्ट गोस्वामी जी भी उसमें उपस्थित थे, उनके पास में आए, उनके चरणों में गिरे और आदेश मांगा, आप कृपा करें जे आप लोगों की कृपा से चैतन्य महाप्रभु की कृपा और उनकी लीलाएं हमारे हृदय में स्फूर्ति हो और मैं उनका ग्रंथन करूं। गोपाल भट्ट जी ने कहा मैं तुम्हें आदेश दूंगा किंतु एक शर्त है, हमारे जीवन चरित्र का और हमारी भक्ता का कहीं वर्णन करना, मेरे प्रेम में दिवस हो करते श्री राधारमण जी स्वयं प्रकटित हुए हैं और सब जो महाप्रभु की कृपाएं हमारे ऊपर में हुई हैं इसका कहीं उल्लेख मत करना, मैं तुम्हें अभिमान से मुक्त हो जाऊंगा। देखिए ऐसे महापुरुष महाप्रभु जी की सब प्रकार से ये कृपा उठा और उनको उन्होंने मना किया, कई अच्छा आप कृपा करें हमारे ऊपर, मैं आपका आदेश पालन करने की भरसक चेष्टा करूंगा। इसी कारण से गोपाल भट्ट गोस्वामी का, प्रबोधानंद सरस्वती इत्यादि जी का या और कुछ जो हमारे महापुरुष लोग हो गए हैं, लोकनाथ दास गोस्वामी का, भोगगर्भ गोस्वामी का, ये बड़े दीन ही होकर के तृणा गति सुनिए सही सुनता अमानिना मान देना कीर्तन सदा, ऐसे ये कीर्तन करते थे, भजन करते थे, ऐसे लोग जिनको स्त्री पुत्र परिवार धन संपत्ति सब कुछ छोड़ देना सहज है, किंतु प्रतिष्ठा छोड़ना बड़ा भारी मुश्किल है। हमारे रघुनाथ दास गोस्वामी ने भी ऐसा बताया, क्या वो प्रतिष्ठा धृष्ट सहचरण ये तो पता रही धृष्ट चंडाली जब तक हमारे हृदय में उदित रहेगी, नित्य करेगी, तब तक भक्ति सुकुमार आवृत्ति कभी भी हमारे हृदय में प्रकट नहीं हो सकती, इसलिए इसको छोड़ने की पहले आवश्यकता। भजन का आरंभ होगा भाई जब तक लौकिक अभिमान किसी प्रकार का रहेगा तब तक नहीं, सब प्रकार के योग्यता उसमें रहने पर भी, सब प्रकार की उनमें योग्यता है, सब प्रकार से वो सर्वोत्तम है, फिर भी उनमें तिनाको की सुनीच तौरों की सहिष्णु अमान और मानव तत्व यह रहता है। भक्ति का ये सहचर है, जिसमें शुद्ध भक्ति रहेगी ये गुण अपने आप रहेंगे, ये गुण रहेंगे तभी ये हर नाम संकीर्तन की स्फूर्ति होती है। तो ऐसे ही ये सब हमारे महाजन लोग थे, ये लोग हमारे हम लोगों के ऊपर में सब लोगों के ऊपर में कृपा करें, सचमुच में हम लोग भी ऐसे ही हो सके, सब प्रकार का दंभ अभिमान ये सब दूर हो, शुद्ध भक्ति में महाप्रभु जी की दी हुई भक्ति में हम लोगों का अपने अनुराग। तो वो इस श्लोक में बतला रहे हैं, ये वेणु गीत का प्रसंग है, आत्मकाम फलमिदम, गोपियां परोक्षम कृष्णस्य, कृष्ण के की बंसी वादन का परोक्ष रूप में, परोक्ष रूप में अवहित्था अवलंबन का कह रहे हैं। श्रीमद् भागवत ने गोपियों को परक्रिया के रूप में ग्रहण किया गया है, गोपियां अपने इस पूर्व राग में किसी को यह नहीं बताना चाहती कृष्ण हमारे अत्यंत प्रियतम हैं, उनसे मेरा प्रेम हो गया है, उनकी नजर लग गई है, हम उनकी हो गए, ये बतलाना नहीं चाहती, यहां तक कि अपनी कृषि क्रिया से भी किसी भी बात से किसी प्रकार से इसको प्रकट नहीं करना चाहते थे। जब गुरुजन लोग इसको भांप लें और हमारे ऊपर ताना कसें, वो नहीं चाहते थे। इसलिए सब प्रकार से अभी तक अपने हृदय में इन भावों को पोषण करती थी। किंतु आज कृष्ण गोचार चले गए करने सखाओं के साथ में, भाव नेत्र से देख रही है, घर में बैठी बैठी गोपियों की कोटि कोटि जूठे हैं, स्वजाति आश्रय स्निग्ध जिसका जिससे मेल है, जिसे अपने तरह का ठीक समान सजातीय सेवा वासना है कृष्ण के प्रति, उनका एक एक दल घर के कोने में, घर के कहीं गुप्त स्थान पर मिल करके और कृष्ण के बंसी वादन की, कृष्ण की चर्चा चल रही। गोपियां कृष्ण को प्यार करती हैं किंतु इसको छिपाती हैं, कोई भाव न कोई न जान सके। इसलिए परोक्ष रूप में अवस्थावलंबन करके किस इस रूप में उसका वर्णन कर रही है कि यह प्रकट न हो जाए कि हम लोग कृष्ण को प्यार करते हैं। भक्ति को भी ऐसे ही गोपन रखने की जरूरत है। मैं भक्त हो गया, जहां यह भाव आया भक्ति का अभिमान हुआ तो भक्ति देवी अंतर्हित हो जाएंगे कर्पूर की भांति। गोपियां उनको छिपा रहे हैं, उसको वर्णन कर रहे हैं। कृष्ण की लीला कथाओं को, कृष्ण के बंसी स्वर को, निनाद की महिमा का वर्णन करते वो पागल हो गई और उसके साथ ही साथ में कृष्ण की के रूप इत्यादि की भी स्फूर्ति उनके हृदय में हो गई। वे तो वह उनका यह गुणगान करने लगी, बरहा पीरम नटवर बपु कर्ण योग इत्यादि के कृष्ण के रूप का वर्णन करते 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 एकदम मुग्ध हो गए और स्मर देश में प्रेम के आवेश में वर्णन नहीं कर सके। किंतु फिर भी जो नहीं चाहती वो व्यक्त, जो गोपियां जो सुन रही हैं उनकी भी तो उसी प्रकार की समवासना है, इसलिए वो समझ जाती है। वो सुनकर के कह रहे हैं कि हमारी भी कोई ऐसी ही भावना है कृष्ण के प्रति। इसी श्लोक में अखनताम फलम इदम ये बतलाया, आंख वालों का या आंखों का यही फल है। इतने आनंद में भर गई, मुग्ध हो गई कि आंखों का फल क्या है ये नहीं बोल सकती। आंखों का फल यही है, पहले उसको कह करके तब आंखों का फल यह होना चाहिए, तो ये नहीं उन्होंने कहा, विवश होकर के कह रहे हैं आंखों का यही फल है। क्या फल है? न परम विदान, आंखों का कोई इसके अतिरिक्त तो कोई दूसरा फल है हम नहीं जानती है। कृष्ण गोचारण करने के लिए गए, भाव की स्फूर्ति उनके हृदय में हो रही है, वो गोचारण में नहीं गई है, वो घर में बैठी दूसरी गोपियों से बात कर रहे हैं और दूसरी कोई कह रही है सखी यहीं से देख रहे हैं, मानो सब उनकी गोचारण कैसे कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, बंसी बाधन इत्यादि कर रहे हैं, कैसे उनकी आंखों की भंगी हो रही है, धूप भंगी इत्यादि वहीं से देख रहे हैं। कहिए सखी, हम नहीं जानती हैं कि आंखों का फल इसे दूसरा क्या हो सकता है। कृष्ण गोचारण करने के लिए गए हैं, सब सखाओं के द्वारा परिवेष्टित है, कोटि कोटि गायों के समूह को लेकर, धेनु पालन को लेकर गोचारण करने के लिए गए हैं। एक वन से दूसरे वन में प्रवेश कर रहे हैं, गाय भर भर जगत रही है। कहते हैं बड़े प्रेम से कृष्ण भी सखा धीरे 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 चलो। कई भर भर चलते हैं तो बंसी के द्वारा इनको मोड़ लेते हैं, नीरी नीरी पानी पिलाना है तो कहते हैं नीरी नीरी, पानी पी करके जब चलती है इधर तो कहते तीरी तीरी, उनके शब्द बताने गायें सब समझती हैं। यो तो गाय साधारण नहीं है, वेद की ऋचाएं गाय हैं, कृष्ण उनका पालन कर रहे हैं, वो सब कुछ जानती है, चिन्मय तत्व है, सच्चिदानंद है। जब किंचित फिर गुरुमती कर मुखम गोष्ठे समस्तम विकत सर्वानंद मुकुंद दयितम लीला अनुकूलम पर शास्त्र मुहुर् मुहुर् निष्ठंकितम जांच्या ब्रह्मादेव सस्तिहं ततो सर्वं मया इदं वन्दते। ब्रज का कुछ भी तीन लता गुण यहां तक दिक्षु सा सभी सच्चिदानंद और कृष्ण लीला के अनुकूल है। एक छोटे से उदाहरण के द्वारा आप समझ सकते हैं कि कैसे अनुकूल है। राधा जी को तिब्रमान हुआ किसी कारण से, हेतु का हेतु, आज मान का उपसंग नहीं हो रहा है, तब उन्होंने अन्न विनय किया किंतु आज का तो ऐसा मान था जो उतरे नहीं। राधा जी श्रीमती जी मुख मोड़ दिया और वहां से चल गई, सखियों के मनाने पर भी आज नहीं माने। थोड़ी देर जब आगे बढ़ी एक कृष्ण सर्प काला सर उनको देख करके और ऐसे फंस गया रास्ता में एकदम खड़ा और ऐसे फंस फंस किया देखते एकदम गिर गई। मां नदी ने कहां उड़ गया, लौटी और दौड़ती आकर के कृष्ण की गोदी में गिर पड़ी। जैसे कृष्ण कल्पना नहीं करते, लीलानुकूलम परम सभी सच्चिदानंद है। इस तरह से जब सांप और बिच्छुओं की तरह से बात तो तीन लता गुणों की तो बात क्या, तो इसलिए गाय सब समझती हैं कोटि कोटि गुणों की समूह को लेकर के कृष्ण चल रहे हैं। अरे 9 लाख तो गाय नंद बाबा की, 11 लाख हमारे दुष्भान महाराज की, ऐसे ऐसे सब कोटि कोटि गायों को लेकर के उनको लेकर के एक वन से दूसरे वन में ले जाना सहज काम नहीं, किंतु कृष्ण अपने बंसी के रव से और अपने मधुर शब्दों से उनको वशीभूत किए हुए एक वन से दूसरे वन में प्रवेश करा रहे हैं। साथ में कौन है, असंख्य गोप बालकों के सखा लोग हैं, वैश्यों से घिरे हुए हैं। फिर वक्तम जरा वक्तम प्रजेश सुतो यो अनुदेन दुष्टम, और उस समय कृष्ण और बलदेव जी जा रहे हैं, ये बंसी बंसी के छिद्र को भर रहे हैं। पहले श्लोक में बंसी है लकड़ी, अंतरसार शून्य है, तो बलदेव जी ही बंसी बने हैं किंतु नगरीला में उसको अंतरसार शून्य, यदि कोई अंतरसार शून्य रहेगा तो महान उत्तम भक्तों का भी संगत आकर के वो वैसा का वैसा ही निरत बना रहेगा। कृष्ण अपनी मधुर अध्यात्म को उसमें भर रहे हैं और वो विश्व को मत कर रही है किंतु स्वयं वही बंसी है, वही बांस की। इसलिए अंतर साफ सुन्न नहीं होकर के कृष्ण के प्रति भक्ति प्रेम भाव होना चाहिए, गोपियों का अनुगमन मान साधारण प्रेम में। यह बंसी के द्वारा अनुदेन दुष्टम, दुष्टम बतलाए देख करके नहीं, वो तो पहले बतलाए ना आंखों का आगे सफलता वही है जो इनके रूप को देखें। कब कृष्ण को उच्चारण करने के लिए जा रहे हैं, सखाओं से घिरे हुए हैं, गायें चल रही हैं और अनुदेन दुष्टम ब्रजेश सुतयो, यहां पर कृष्ण और बलदेव जी जा रहे हैं। बलदेव जी का नाम लेने की आवश्यकता यहां नहीं थी किंतु भाव गोपन करने के लिए, कहीं ये प्रकट न हो जाए कि हम लोग कृष्ण पर अनुरक्त हैं, इसलिए और भिक्षा के लिए उन्होंने बलदेव जी को भी ले। कृष्ण और बलदेव जी जा रहे हैं जो बेनु वादन करते हुए जा रहे हैं, और सखाओं के तरफ में कटाक्ष से बंसी लेते हुए मुस्कुराते हुए और उनके तरफ में कटाक्ष पात करते हुए चले जा रहे हैं। यदि किसी ने यह देखा ही नहीं, निपीतम विशेष रूप से निशेष रूप से पीतम, यदि इसका किसी ने पान किया, कैसे आंखों के द्वारा ही पान किया, कभी कान के द्वारा पान करते हैं, कभी मुख के द्वारा पान करते हैं, तो इस तरह से निकीतम अनुभक्त कटाक्ष मोक्षम देखते हैं, ये देखा है उनका जीवन सफल है। दूसरा इसमें आप बताते हैं प्रजेश सुखर हो, कौन देख रहा है गोपियां बद्रे जी को किस रूप में देखती हैं? ज्येष्ठ के रूप में देखती हैं, गुरु बुद्धि से उनको प्रणाम करती हैं और वो भी उनको आशीर्वाद देते हैं, दूर से अपने नेत्रों से ही उनको आशीर्वाद देते हैं। इसलिए यहां पर गोपियां जो उनको देख रही हैं, अनुदेहि दुष्टम ब्रजेश सुतयो, ब्रजेश सुत जो दो हैं कृष्णा और राम, उनमें जो पीछे अनु पीछे देनु दुष्टम देनु का जो आस्थापन करते हुए जो जा रहे हैं, पीछे पीछे जो हैं, आगे आगे बलदेव प्रभु जी जा रहे हैं और पीछे कौन चल रहे हैं? कृष्ण, जो अपने अथर पर मुरली लिए हुए हैं। इनका जो कटाक्ष है मोक्ष, यदि नहीं देखा जीवन वृथा है, आंखें वृथा है, लोर पंख की भांति है। चलो सखी जल्दी से चले देखें विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी का, चलो जल्दी से देखें। देखें नहीं पीते पिए अधरा मत पिए, अरे ये खबरदार ना मत लो, अभी सुन रही होंगी हमारी ससुर सास ये सब लोग होंगे गुरुजन लोग सुन रही होंगी या सुन रहे होंगे, मत कहो। कहिए क्या करेंगे, करेंगे क्या, हमारी नंदा जी तो देखती हैं सुनती हैं, जितनी बताएं हम लोगों के लिए नहीं है वो क्यों सुनती हैं? चलो जो होगा सो देखेंगे, तो चलो दूर से देखेंगे किंतु नीतम हमारे लिए संभव नहीं है, पीना हमारे लिए संभव है। अरे चलो तो देखो जो क्या होता है, उस बंसी में नाद का ऐसा ही प्रभाव है, कृष्ण के मुखारविंद का ऐसा ही प्रभाव है। काष्ठियन के पदार्थ कल्पदायक देन दीप, इसे तो गो द्वीज धूम मृग कुलकांड विघ्न सभी अपने अपने धर्मों को छोड़कर के विपरीत धर्म का आचरण करने लगते हैं। जमुना जी जो चलती है वो स्थिर हो जाती है, हवा स्थिर हो जाती है, चलने वाले जो है वो जड़ हो जाते हैं और जड़ भी चेतन का व्यवहार। इनकी बंसी की निनाद और उनका रूप सुन करके हमारी तो बात ही क्या है, पेड़ों से अश्रु धारा होने लगती है, पक्षी जो चलने वाले हैं स्थिर होकर के मौन होकर के रह जाते हैं, सब चीज की धारा ही बदल जाती है। तो हमारी ये धारा भी बदल गई, हमारा जो भाव बदल गया है, अपने पतियों को छोड़कर के यहां ले जा रहे हैं। चलो तो सुनो तो देखो तो जो कारण है वो बंसी करा लेगी। इसलिए आप बताते हैं जो पीछे जो जा रहे हैं कृष्णचंद्र अपना पल मुट ले लिए थे, उसमें अपने अभ्रम मत को लगा करके, तो उस समय में कृष्ण के आंखों से जो उनका कटाक्ष मोक्ष हो रहा है जो देख रहे हैं, इसको जो दर्शन किया उसी के यथार्थ में सफल है। यहां पर एक विचार और है, ब्रजेश सुतयो बदे जी के लिए ये कहा गया कहां तक संगत है? अरे हां संगत, यद्यपि कृष्ण के लिए तो यह कहा जाता है जिस समय में वो मथुरा में अधिभूत हुए, वे प्रकट हुए संत चक्रवरा पत्नी के रूप में चतुर्भुज रूप में, उसी समय में गोकुल में जसोदा मैया के गर्भ से कृष्ण प्रकट हुए एक ही काल में, पीछे से जोग माया जी ने जन्म ग्रहण किया। जिस समय में वसुदेव जी ने और देवकी जी ने प्रार्थना की आप बच्चे बन जाएंगे, शिशु बहु साथी साथ में गोकुल वाले कृष्ण यहां पर पहुंच गए और अपने रूप में उनको ग्रहण कर लिया, मिला लिया, उसी को बस देव वहां पर रखा है। श्रीमद् भागवत में ऐसे हजारों प्रसंग हैं जिसे ये प्रतीत होता है कि परीक्षित महाराज को प्रसन्न करने के लिए ही उन्होंने जदा कदा कहीं कृष्ण को वासुदेव पुत्र कहा है, वसुदेव पुत्र कहा है, देवकी नंदन इत्यादि कहा है। किंतु अपने मन का भाव उनका यही है कि वो नंद नंदन है, जसोदा नंदन है। इसलिए जन्म के प्रसंग के बाद में नंद के घर में जब उत्सव हुआ वहां पर उन्होंने आत्मज उत्पन्न बतलाया, नंदस्तु आत्मज उत्पन्न जाता साधु महामरा नंदा, बड़े प्रसन्न हुए, उनका आत्म संस्कार कराया। क्या जात कर्म संस्कार किया? जात कर्म किसको कहते हैं? नारी छेदन इत्यादि का नाम जात कर्म है। कृष्ण की यहां नर्मद लीला हुई, वहां पर भगवत तत्व नारायण इत्यादि वासुदेव कृष्ण वहां पर प्रकट हुए, जन्म की लीला वहां पर मथुरा में नहीं है, किंतु यहां पर जन्म की लीला है कृष्ण की। केवल यही नहीं, जब कंस ने उस लड़की को पकड़ा पैर और पत्थर पर पटकना चाहा, वो अष्टभुजा दुर्गा के रूप में ऊपर उड़ गई और भागे रहे, कंस तेरे मारने वाला तो अमित कहीं प्रकट हो गया। उसमें सुखदेव गोस्वामी जी ने कहा अदृश्यत अनुजा विष्णु, विष्णु की जो अनुजा है वो वहां पर अदृश्य हो गई। यहां पर विष्णु माने कृष्ण, कृष्ण की अनुजा कौन सी? मथुरा में कौन सी उनकी अनुजा पैदा हुई? यदि बात सुभद्रा जी नहीं तो बहुत पीछे की बात है। वो तो साथ ही साथ जिसको वो ले आए थे कहां से? मथुरा से तो लाए हैं, वो तो गोकुल से ले आए थे उसे, तो अनुजा कैसे हो गई यदि कृष्ण की वो बहन नहीं है? तो इसलिए वो कृष्ण की बहन है, इसलिए कृष्ण नंद बाबा के ही पुत्र है। नौमुद्धते अपर बापु से पशु पांग जाय, पशु का अंग जाय, पशु पशुओं को पालन करने वाले नंद बाबा के ये पुत्र है। ये ब्रह्मा जी हमारे संप्रदाय के गुरु हैं, ये झूठ नहीं बोलेंगे, किसी के मन की बात नहीं कहेंगे, इसलिए उन्होंने कह दिया जयत के अतिकम जन्म ना ब्रजव, मथुरा में नहीं, कहां जन्म हुआ उनका? जन्म ना ब्रज, ब्रज में जन्म से। आज ये वैष्णवपुरी क्या द्वारकापुरी और मथुरा इत्यादि से ही अधिक ये सुशोभित हो रही है, जहां पर लक्ष्मी कुंजों में झाड़ू देती है। इसलिए कृष्ण का यहां पर गोकुल में जन्म तो अभी संभाल सकते हैं, इसमें नम लचु का कोई प्रश्न ही नहीं है, बल्कि अंत में उन्होंने कह भी दिया है हाँ देव की जन्म भागो, ये बात है देव की जन्म भाग। उन्होंने वो जगत को के अधर्म इत्यादि को दूर करने के लिए आती, ये भी बात है, इसलिए नहीं आए। वो तो बुद्धि प्रेमास्वादन करने के लिए आए, भक्त विनोदनार्थ, भक्त के विनोद के लिए आए थे, भक्तों के विनोद के लिए, क्रीड़ा के लिए आए थे। और श्लोका संघात अपनी महाविष्णु विष्णु के अवतारों के द्वारा ये युग धर्म परिवर्तन इत्यादि सब ये कर सकते थे, इसलिए इसके लिए नहीं आए। इसलिए देवकी जन्म बादो ये बात स्वरूप है कहा जाता है ऐसा, किंतु यथार्थ में नंद बोलते हैं। बलदेव जी के लिए यहां पर ब्रजेश सुत ब्रजेश के नंद नंद के ये दोनों पुत्र इस रूप में कि ये हमारे वसुदेव जी ने नंद बाबा से कहा, जिसमें वसुदेव जी कर चुकाने के लिए कंस के पास में गए, नंद बाबा गए वसुदेव, वहां पर वसुदेव जी से मिले, आया ठीक है तुम आए, जल्दी से चले जाओ। उस समय मैंने पूछा था उन्होंने, हमारे वसुदेव जी ने पूछा नंद बाबा से, देखो हमारे एक लड़का है कृष्ण के लिए नहीं कहा, तो बाबू उधर है कृष्ण के लिए नहीं कहा। कहा हमारा एक लड़का प्रभु के साथ में वहां पर गया है, तुम जन्म से हुआ उसका जन्म भी तुम्हारा ही होगा, वो हमको कभी पिता के रूप में उसने देखा नहीं, तो आप ही को पिता और जसोदा कभी मैया जा रहा हूं मैया करता है, वो जानता कि मैं उन्हीं का पुत्र हूं और आप ही से पलकों के समान जैसे आंखों की रक्षा करते हैं इस प्रकार से आप लोग उसका पालन पोषण करते हैं। इसके अतिरिक्त भी जब कृष्ण के कहने से बलदेव प्रभु जी, बलदेव जी ने कहा कृष्ण को जो चला हम दोनों भाई चले, अरे एक बात तो ब्रज में चले, ब्रज को तो हम भेज करते नहीं आए हैं, चलो ब्रज में चले। तो ब्रज को छोड़ करके आया और प्रतिज्ञा करा, प्रतिज्ञा करके आया कि कल भी हम लौटेंगे, कल नहीं तो परसों जरूर लौट आएंगे, कि तुम नहीं लौटे। अच्छा ठीक है तुम नहीं लौटे, एक दिन के लिए तो जा सकते हो, चलो एक बार घूमे। कृष्ण नहीं आए, उद्धव जी को भेजा, अपनी पत्नी दे दी, संदेश दिया। बलदेव जी ने कहा नहीं, मैया ने भी कहा गोपियों को संदेश के द्वारा दूसरे आदमी के पत्री के द्वारा तुम सांत्वना देना चाहते हो, जब तक तुम खुद नहीं जाओगे तब तक उनकी सांत्वना नहीं होगी। कृष्ण रोने लग गए, कहे तुम धूप हो, बलदेव जी धूप हो, तुम रोने क्यों लगे, चलने में क्या है। कृष्ण इसका उत्तर कुछ नहीं दे सके, उनकी टीस उनके हृदय में दिए, ये किसी से कहीं भी नहीं जा सकती। फिर बलदेव जी ने उनको कहा चल अब चलो, उद्धव जी से तो संतना नहीं हुई, तुम चलो। फिर नहीं आए तो बलदेव प्रभु जी कहे तुम नहीं जाते तो मैं खुद जाता। तो वहां पर उन्होंने बतलाया पीतरो, मैंने दोनों को कभी आदर किया है, माता और पिता को, माता पिता के रूप में उन्होंने बुलावा यशोदा जी का अभिवादन किया है, श्रीमद भागवत में ऐसा उल्लेख। क्यों? इसलिए कि बलदेव प्रभु जी नंद बाबा से कह रहे हैं, जिसने मथुरा में ये गए थे कर देने के लिए, उसी समय में बलदेव जी का है कंस मारा गया है, उसका संस्कार भी कर दिया गया, नंद बाबा वहीं पर पड़ाव डाले बैठे हैं अंबिका बन में, सोचे अब कृष्ण आएगा बलदेव आएंगे, बहुत विलंब हो गया, एक दिन नहीं दूसरे दिन भी नहीं आए। तीसरे दिन शाम को जब अंधकार हो रहा है, बड़ी मुश्किल से मिलने के लिए आए, पांच तो बज गया है, और 15-10 मिनट बहुत शाम हो गई, अंधकार हो गया, अपलक नेत्र से देख रहे हैं, अभी वसुदेव तो भूल गया, जदुवंशी लोग भूल गए, कृष्ण और बलदेव नहीं मिलते, गला रुक गया। उसी समय में देखा कि कृष्ण बलदेव मानो छिप करके आए हैं, बाबा पैसा रूप देख करके उनके दाएं और बाएं जंगे पर बैठ गए, कहे तुम भी भूल गए और तुम भी नहीं आ रहे, क्या मथुरा वृंदावन लौटने की इच्छा नहीं। समय में बलदेव जी कहे मैं कृष्ण को और आपको छोड़कर के कदापि मथुरा में नहीं जा सकता, बाबा तो वही है ना, बाबा तो बहुत प्रकार के पिता होते हैं जो पालन करता है, राजा भी पिता होता है,
जन्मदाता
भी पिता है, इस तरह से पिता तो बहुत है, यहां तक ससुर भी पिता है जिससे कन्या से विवाह किया, ये सभी पिता है, और उपनेता जो उपनयन देता है वो पिता है, किंतु जिस पिता ने पुत्र को पाला नहीं और उसे छोड़ दिया त्याग दिया, वो पिता पिता कैसे हो सकता है। आप ही हमारे पिता हैं, जब भी आप कहते हैं कि बसदेव हमारे पिता हैं, किंतु मैं उनको नहीं आप ही को पिता मानता हूं, उन्होंने तो मेरा पालन नहीं किया,
पालन को आपने किया है, भरपूर पिता का जो प्रेम होता है आपने दिया है। मैं कृष्ण को छोड़कर कभी आपको छोड़कर के आपको छोड़कर के कभी नहीं जा सकता। इसलिए ऐसा प्रतीत होता है कि ये ब्रज के सभी लोग जानते हैं, ऐसा कोई नहीं है जो नहीं जानता, ये ब्रजेश्वर नहीं है, अर्थात ये नंद बाबा है। इसलिए यहां पर जो रूपी ने कहा ब्रजेश सुतयो, गोपी में दो प्रकार की है। एक कल मैंने कहा था कमाक्षिका और दूसरी है तत्त इच्छा भावना, दो प्रकार की गोपियां हैं। इसमें श्रीमती राधिका जी चंद्रावली प्रभृति मुख्य जो युद्धेश्वरियां हैं वो सातों प्रमेय नीति की सेवा है, उसका कोई अंकुश नहीं। कृष्ण उसे अकेले मिल सकते हैं, दुखेले मिल सकते हैं, ये उनसे मिल सकती हैं। इसलिए वो गोपियां तो कृष्ण के लिए वो देख रही हैं कि पीछे पीछे जो कृष्ण जा रहे हैं, आगे आगे बलदेव ब्रजेश्वरों में से आगे आगे चल रहे हैं बलदेव जी, है सीना बजा रहे हैं या पेड़ बजा रहे हैं, और पीछे जो अनुदेव दुष्टम, पीछे जो श्यामल वर्ण का है जिसके श्यामल शरीर पर स्थूल विद्युत की भांति की तांडव का जा रहा है, गले में वैजयंती माला बन गई, सिर पर मोर के पंख लगे हुए हैं, बाएं के तरफ में वो कुछ झुके हुए हैं, मानो किसी का कुछ स्पर्श करना चाहते हैं। सखा लोगों को उनकी गीति का गान करते हुए चल रहे हैं, कृष्ण के चरणों में जो चिन्ह प्रतिफल लग रहे हैं, उनके इस भाव को देखकर के कृष्ण स्वयं भी नृत्य करने लगे, मयूर नृत्य करने लगे, शाखाएं पेड़ के नीचे झुक करके वो भी कुछ नृत्य करने लग गई, जमुना लहरों के रूप में नृत्य करने लग गई, सखा लोग भी नृत्य करने लग गए, और इसका चिंतन स्फुरण करते उनके हृदय में स्फूर्ति है, गोपियों का हृदय भी नृत्य करने लगा, समस्त वातावरण एकदम नृत्य करने लगा, मानो उसी समय में कृष्ण बंसी वादन करें, मयूर नृत्य कर रहे हैं। मैं उन्हें सोचा कि वाह धन्य ये बाबत है जिसके सब लहरियों पर मैं नृत्य कर रहा हूं, थिरक रहा हूं, बस एक पंख निकाला और उनके लिए दे दिया, जैसे कोई सुंदर नृत्य कर रहा हो, और उस समय में वो कुछ लेकर के रुपए नोट 5 रुपया 10 रुपए का लेकर के ऐसा न्यौछावर करते हैं, ये राष्ट्रीय लाओ में देखे हैं, किसी का मन प्रसन्न हो जाता है ऐसा करते हैं, मन मयूर कृष्ण के बेलू भी तो पत्थर रखता हुआ विभोर हो गया, और निकाल करके एक पंख हमारे पास में क्या है, यही तो है मेरे पास में, यही हमारा धन है, सर्वस्व है, मैं तुम्हें देता हूं, छोड़ दिया। कृष्ण ने बड़ी प्रसन्नता के साथ में लेकर के मानव यहां पर लगा लिया, इन्हें कभी उसको छोड़ते नहीं, इस तरह से सभी नृत्य कर रहे हैं, गोपियां का भी मन नृत्य कर रहा है, ये देख रहे भाव नृत्य से, और ये तो युद्धेश्वरियां हैं, ये स्वतंत्र इनकी सेवा है, ये कर सकती है। किंतु दूसरी जो कल मैंने कहा स्वभक्ति श्रीयम, जो चैतन्य महाप्रभु देने के लिए आए हैं, वो जो भाव देने के लिए आए हैं, मंजरी भाव इत्यादि सबसे की अनुभूता, जिनको मिलन की आकांक्षा नहीं है, मिलाने की आकांक्षा रहती है, और उसे कोटि गुण बल्कि उनको अत्यंत अधिक सुख होता है, चैतन्य चैतन्य ने उसको इस तरह से वर्णन किया गया है, सखी व स्वभाव एक अपथ्य कथा, सखी मैंने कहा एक सखी कृष्ण पक्षी कुछ होती है, जैसे धनिष्ठा इत्यादि सखियां हैं, दोनों की सेवा करने पर भी इनके तरफ में कुछ इंक्लिनेशन रहता है, इनके तरफ में कुछ झुकाव होता है, और एक नित्य सखी होती है और एक प्राण सखी,
नित्य सखियों में भी जो श्रेष्ठ हैं वो काम सखी है। इनका स्वभाव क्या है? कृष्ण की इच्छा मिलने कराने पर भी ये नहीं मिलती है, अपने गीतेश्वरियों को ही, राधा इत्यादि को, श्रीमती राधा किशोरी इत्यादि के को मिलन कराने में उनको इतना आनंद होता है कि मिलने से कोटिगुण, तो वो छोटी बातों पर क्यों आए? इसलिए यहां पर वो बतला रहे हैं इन गोपियों का भाव दोनों तरह से व्याख्या की गई। ये जो गोपियां हैं अकेले कृष्ण को देखना नहीं चाहती हैं, उसे उनका आनंद उल्लास नहीं होता। इनका उल्लास कभी कभी होगा यदि श्रीमती राधिका जी हैं, और इस भाव को लाने के लिए कुछ दूसरे रूप में अन्वय करना पड़ेगा। इसका वैश्य जो कहा है, वयस्या वयस्य लोग सखाओं से गिरे तो सखियों से थी, वहां पर सखियां वयस्या सखियों से घिरे गए, कब दोनों मिल रहे हैं। उसमें अनुदेन दुष्टम ब्रजेश सुतयो, ब्रजेश सुतयो मैंने सुतश्च सुताश्च सुतयो, सुत माने भजन नंदन, नंद नंदन केसु, और दूसरे एक और हैं ब्रजेश, इनसे भी बड़े वो हैं विश्वामित्र महाराजा, उनकी लाड़ी जो सुता है, सुतश्च सुताश्च सुतयो, दोनों के लिए प्रयोग हुआ। इसलिए यहां पर सुतयो अर्थ कृष्णचंद्र जी नंद नंदन, और श्रीमती राधिका जी जो विश्वानंद हैं, दोनों वहां पर हैं, मिल रहे हैं, सखियां चारों तरफ से घिरी हुई है। शिला गोविंद देवो पृष्ठादि सभ्य मानो स्मरा, वहां पर राधा जी हैं, कृष्ण हैं, बेल बजा रहे हैं कृष्ण, अम बेल दुष्टम कृष्ण बजा, राधा जी ने ले लिया बंसी, और अम बेल दुष्टम पीछे से कृष्ण जो बजा रहे हैं और राधा जी उसको बजाने लगे। छिद्रों पर यह दसों उंगलियां नृत्य कर रही है किनकी? कृष्ण की, और उसमें अगर सुधा जो भाग रही है वो कौन? श्रीमती राधिका। राधा जी कृष्ण के तरफ में कटाक्ष कर रही है बड़े प्रेम से, और कृष्ण उनके तरफ में उस कटाक्ष भरे बंसी बाजन करते हुए राधा और कृष्ण को जो देखा उनकी आंखें यथार्थ में सफल है, अन्य की नहीं। ये उनका भाव है, ये सखियों का भाव है, जो प्राण सखियां हैं उनकी प्रिय राम सखियां जो ललिता में चाहता है, वो दोनों की यद्यपि सेवा करते कृष्ण के तरफ में थोड़ा सा झुका होगा, किंतु ये इनका भी भाव, उनकी सामने केवल राधा जी तांबुलादान वृंदारण्य महेश्वरी सप्तति प्राण कृष्ण सखी किला किला श्री रूप मंजरी मुखा तब दासिका संशय मैं रघुनाथ दास को शांति वर्णन कर रहे। इनका इसी के लिए करें कृष्ण शहर अधिकार जे लीला कर निज के भी हई देता है कोटि सुख पाए। राधा जी के साथ में कृष्ण जो लीला कर रहे हैं वो लीला ये नहीं चाहती स्वयं मिलना, बल्कि राधा कृष्ण को दोनों को ही मिला करके उन्हीं के आनंद में इतना आनंद होता है जो कोटि गुण जो होता है कृष्ण के मिलने में। राधा स्वरूप कृष्ण प्रेम कल्पना था, सखीगण हम का अल्लाह पुष्प पाता, कृष्ण लीलाम के जबी लता के सिंचय निज से कहते पल्लवा दे कोटि सुख है। राधा जी प्रेम कल्प लता है, वृक्षों को आलिंगन करती है लता, लता को आनंद करने में आनंद होता है, इसको देखकर के जो पुष्प पत्ता और मंजरियां हैं उसी से पुष्ट हो जाती है, उनको पेड़ को चारों तरफ से लपेटने की जरूरत नहीं, आलिंगन करने की जरूरत नहीं, बस लता ही आलिंगन करेंगे, और वो क्या करेंगे प्रेम के मारे हवा के झोंकों में बड़े प्रेम से वो पुष्पित और पल्लवित होकर के एकदम झूम पड़ते हैं। लता को आनंद हो रहा है, ये कैसे प्रतीत होगा? लता से नहीं बल्कि उनके पल्लव और पुष्प और मंजरी को देकर के ये पता चलेगा कि वो कैसे प्रसन्न हो गई है। इसलिए ऐसी जो सखियां हैं, प्राण सखियां हैं, कौन रूप मंजरी मुखार, ऐसी सखियों को हम लोग प्रणाम करते हैं पुनः पुनः। वो हम लोगों के ऊपर में कृपा करें। ये रूप गोस्वामी आप जानते हैं कि कैसे महाप्रभु जी के कृपा प्राप्त हुए, अपने को कृपा को उनके अंदर में भर ही दी प्रयाग में, सूत्र रूप में सब कुछ उनके अंदर में हृदय में स्फूर्ति कर दी। यदि उनको आप कृष्ण का नित्य रूप मंजरी समझते हैं तो कोई बात ही नहीं, किंतु लवलीला में ये दिखला रहे हैं, लवलीला में तो उनको ऐसा ही दिखलाना होगा, तो इसलिए वहां पर दिखला रहे हैं। सब उनके अंदर में रसों की सब प्रकार से स्फूर्ति कर दी। इतना ही नहीं, जिस समय वो महाप्रभु जी से मिलने के लिए जगन्नाथपुरी में गए और उन्होंने रात्रि वहां रथ यात्रा में महाप्रभु तो श्लोक पढ़ रहे हैं और श्लोक पढ़ रहे हैं ऐसा कि केवल सब दामोदर के अतिरिक्त कोई उसका अर्थ नहीं जानता, जब कौमा रहा कोई नहीं समझता, केवल एक सब दामोदर समझते हैं। महाप्रभु भाव श्लोक करते कर रहे हैं, मृदंग का काल मानो मेघ का गर्जन हो रहा है, उस समय में जय जगन्नाथ का शोर से आकाश एकदम भरपूर हो रहा है, कोई किसी की ध्वनि नहीं सुन सकता। और महाप्रभु जी भाव अभिष्ट होकर के सही तो पारायणनाथ पाई हूं और इसके बाद में ये भाव लाया जब भाव मारा, कोई छोटा सा उनका अनुग्रह पात्र भी साथ में था। ये थे हमारे परम पूज्य आराध्य श्री रूप गोस्वामी जी। उन्होंने उसको अपने हृदय में लिख लिया और ताल पत्ते के ऊपर में रख करके जब हरिदास ठाकुर जी के पास में जबकि पाया है कौन पे सिद्ध बकुल में आए, उन्होंने लिख करके ताल पत्र में स्नान करने के लिए समुद्र में गए और उनकी झोपड़ी में एक जगह लगा दिया। महाप्रभु जी रथ यात्रा समाप्त के बाद में वहां पर पहुंचे, हरदास ठाकुर को रोज दर्शन देने के लिए आते, अपना प्रसाद मां जगन्नाथ जी का भेजवाते, ऐसी उन पर कृपा ये मंदिर में नहीं जाते, तीनागति सुनी हम लोग तो हड़ताल कर देंगे, मंदिर में नहीं जाएंगे, लोगों से लड़ाई झगड़ा मारपीट सब कर लेंगे, वो रास्ते पर नहीं जाते भी अशुभ हो जाएगा, मैं मुसलमान। अरे उनको जो मुसलमान समझेगा पाषाण भी बहुत धुए, वो पाषाण भी है तो वो दिव्यता करके लिए महाप्रभु जी उनके पास में पहुंच जाके हरा उनका हाथ ऊपर में गया और लेकर के देखा, हृदय उल्लास से भर गया। किसने लिखा ये? मैंने कहा इसे ये तो रुक रख करके गया है, ठीक बस वहां से लौट करके जब आए पीठ पर एकदम थप्पड़ मारा। कैसे ये जान गया? उनके साथ में सौ दामोदर आय रामानंद प्रभु जी समस्त लोग हैं, कैसे जान गया? सरस्वती जी ने कहा जी आप पर आपकी जिस पर कृपा है वो कैसे जान सकता है, आज मैं समझ गया कि आपकी भरपूर कृपा इसके ऊपर है जिसको कोई नहीं जान सका, इसने जान लिया। समय हो गया है तो इसलिए रूप जी उनके कृपा पात्र है, तो ये रूप प्रभु जी हम पर कृपा करें कि उनकी भावनाओं को उनके इन सब रस की बातों को हम लोग समझ सकें, लोग थोड़ा सा जागृत हो जाए। यदि हमारा लोग उनके पति हो गया या लोग ही कोटि जन्म सुकृति न लभते यह प्रेमा भक्ति बिना लोग के नहीं मिलेगी। इसलिए आज भी गोपाल भक्त गोस्वामी के श्री चरणों में उनके आराध्य हमारे संप्रदाय के आराध्य इस राधा रमन जी के चरणों में हम शरण ग्रहण करते हैं, ये भाव हमारे हृदय में स्फूर्ति हो, उनकी कृपा लाभ हो, हम इन गोस्वामियों के इन भावों को हम समझने में समर्थ हो सके, ऐसी ये कृपा करें। यही कहकर के आज का वक्तव्य में समाप्त करता हूँ। वंशा कल्पतरुभ्यः कृपा सिंधु पतितानं पावनेभ्यो
चिरंजीव भक्ति वेदांत नारायण महाराज को विश्व में ऐसा कौन है जो मैं जानता हूं। आपने मथुरा में किए थे गौरी मठ, उसके बाद वृंदावन में त्रिभुव सनातन मठ की स्थापना कर जो मूल्यांकन किया है उसका मूल्यांकन भी किया जा सकता है। आपने इतने दिन दो दिन जो भ्रष्टाचार से लिखा था अनपिचरा सड़तीसरा आज तक किसी ने नहीं देनी, ये बात नहीं भूल गए वो चिराग फिर उसको समझते तुम्हें न तुम उसको समर्पण करने के लिए चैतन भाव पुराए क्या वैराग विद्या भक्ति लोग काला महत्व वो भक्ति हमें समर्पित देगा। इसका मतलब यह है कि श्री चैतन्य महाप्रभु ने क्या कि राधा भाव को स्थापना किया वो भक्ति है। क्योंकि दुर्ग में ना हुई तो केवल हुई तो केवल भरी काम दे राधा मेरी माँ प्रेम सीमा जगत के जाना सके वो आपने अत्यंत सुंदर रूप से व्याख्या की है। आपके हम धन्यवाद क्या दें श्री राधा रमन जी आपको धन्यवाद देंगे और कथा जो है आपको कल अवकाश नहीं है इसलिए कल आप पढ़ाएंगे नहीं। कथा का समापन जो पद्मनाभ गोस्वामी है दसवें बारे में किया उसके लिए उनको भी धन्यवाद है भगवान उनको चिराई करे ऐसे यह कथा होती है। वो श्री राधा लाल की जय।
राधा रमन हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय